ओम शांति। ज्ञान अमृत पीते पीते क्या बन जाएंगे? हाँ, अमर बन जाएंगे। बाबा हम बच्चों को अमर भव का वरदान देते हैं, ऐसा है ना? हाँ, अमर भव का वरदान मिल चुका है ना, अमर बन गए है ना, या अभी तक बनना है? हाँ? बन गए? कैसे बन गए अमर? दे तो विनाशी है, हाँ? फिर अमर कैसे बने? आत्मा सदा अविनाशी और अमर है, अजर अमर अविनाशी, ये आत्मा के लिए गाया जाता है। तो हम भी जब बाप ने ये पहचान दी ना, केवल पहचान दी इतना ही नहीं, और क्या किया बाप ने? ये पहचान दी और पहचान के साथ साथ और क्या कराया? हाँ, पहचान देके फिर हमें ये अनुभव कराया। बाप ने हम बच्चों को ये रियलाइज कराया। क्या रियलाइज कराया? कि हे बच्चे, तुम अमर अजर अविनाशी आत्मा हो। किया ना रियलाइज? किया है पक्का? भूलेगा नहीं? भूलता नहीं है? हाँ? इसमें चिप हो जाते। भूलेगा नहीं ये तो ठीक, पर भूलता नहीं है? क्या बोलेंगे, भूलता है? हाँ? कभी नहीं भूलता है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ये कभी नहीं भूलता है? हाँ? अब जवाब नहीं है। अच्छा, बाप अजर अमर अविनाशी है, ये तो भला याद है सदा, ये तो नहीं भूलता है ना? हाँ? मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, ये थोड़ा थोड़ा भूल जाता है। हाँ? बाप अविनाशी है, ये तो नहीं भूलता है ना? बाप पर पूरा निश्चय है, ठीक है? हाँ? आज का विषय क्या है? हाँ? निश्चय बुद्धि और श्रीमत। निश्चय बुद्धि विजयंती, ये स्लोगन पक्का है। हाँ? और साथ साथ श्रीमत, ये है आज का विषय, ठीक है? और आप सब पूरा नियम मेजॉरिटी, निश्चय बुद्धि की परिभाषा तो जानते हैं ना? हाँ? सब निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे बैठे हैं ना? कोई है ऐसा जिसको निश्चय नहीं हो? हाँ? जो निश्चय बुद्धि है वो हाथ उठाए। कोई रह गया तो समझेंगे वो निश्चय बुद्धि नहीं है। अच्छा, सभी बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। अब निश्चय बुद्धि है, बाप में निश्चय है, और क्या क्या निश्चय है? हाँ? वाह, बहुत निश्चय बुद्धि है बोलने में, देखो ये बहुत अच्छा लगता है। जब सब बोलते हैं ना, भले कुछ समझ में आता कुछ नहीं, लेकिन इतना तो समझ में आया कि सबके अंदर उमंग है, सब जानते हैं इस बात को और सभी इसका जवाब दे सकते हैं। तो एक तो बाप में निश्चय है, ठीक है? और दूसरा स्वयं में निश्चय है। तीसरा ड्रामा में निश्चय है। और क्या निश्चय है? ये तो फटफट जवाब आ गए तीन। हाँ? परिवार में निश्चय है, ईश्वरी परिवार में, बेहद के बाप का परिवार है, ये निश्चय है। और क्या निश्चय है? अभी जवाब नहीं आता है। भविष्य पद में निश्चय है, ठीक है? और क्या निश्चय है? पढ़ाई पर पूरा निश्चय है, ये भी ठीक है। और क्या निश्चय है? बस। हाँ? तो ये बाप में ही निश्चय हुआ ना, बाप का निश्चय है। और बाप जो कुछ बताते हैं उसमें निश्चय है। हाँ? जो बाप बताते हैं उसमें निश्चय है। क्या निश्चय है? कि जो बाप बताते हैं उसमें हमारा कल्याण है। और जो कल्याण की बात होती है, जहां देखा जाएगा इस बात में मेरा कल्याण है, तो उस बात को तो जल्दी हम ले लेंगे ना। दूसरे का हो तो भी थोड़ा सोचें, परंतु मेरा कल्याण है तो उस बात को जल्दी ले लेंगे। तो जो भी कुछ बाप बताते हैं उसके अंदर हमें निश्चय है कि बाप जो बताते हैं उसमें हमारा कल्याण है। और ये निश्चय होने के कारण क्या इससे लाभ है? अगर ये निश्चय है बाप जो बताते हैं उसमें हमारा कल्याण है, तो इससे हमें लाभ क्या है? हाँ, वो तो क्या है, 21 जन्मों की बात ही मिलेंगी, ये निश्चय है। तो ये हमें लाभ मिलेगा। पर जो भी बताते हैं, चाहे 21 जन्मों की बात ही कहो, चाहे उसमें हमारा कल्याण है, तो इससे और अभी क्या फायदा होगा हमको? हाँ, बोलो, निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, और क्या होगा? जो हमने पहले बताया कि जब हमें ये पता चलता है कि इस बात में हमारा कल्याण है, तो मेरा कल्याण है, उस बात को हम जल्दी ले लेंगे, धारण कर लेंगे। तो इससे फायदा हमारा होगा कि जो बाबा बताते हैं उसको हम जल्दी धारण करेंगे, सहज धारण करेंगे। क्योंकि निश्चय है ना कि बाबा जो बताते हैं उसमें मेरा कल्याण है। जब कल्याण है तो उस बात को क्यों ना धारण करें? तो इससे हमारी धारणा सहज हो जाएंगी और जल्दी बन जाएंगी। इसलिए निश्चय बुद्धि बनना बरस जरूरी है। बाप में क्या क्या निश्चय है? फिर प्रश्न ये आता है, बाप में निश्चय है बाबा भगवान है, बाबा ही आकर के ये ज्ञान देता है, सर्वशक्तिवान है, और क्या क्या निश्चय है? हाँ, बाबा विश्व कल्याणी है, और क्या क्या कल्याण, और क्या क्या निश्चय है? हाँ, साथ ले जाता है, और क्या क्या निश्चय है? हाँ, बाप के परिचय का निश्चय है। अगर वो अपने मन में वर्णन करते रहो और देखो हमें क्या क्या बाप के प्रति बातें याद आती हैं, हमारी स्मृति के अंदर बाप का परिचय किन किन बातों के आधार पर है, अथवा कैसी कैसी स्मृति हमें बाप के लिए आती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे मुझे याद करो, तो रोज भिन्न भिन्न स्मृति दिलाता है ना। तो क्या क्या स्मृति बाप के निश्चय के संबंध में हमें याद आती हैं? जैसी जैसी बाप के संबंध में निश्चय याद आता जाएगा, वैसा वैसा बाप के प्रति प्यार बढ़ता जाएगा। तो क्या क्या मुझे निश्चय है बाप में, वर्णन करो। अभी एक एक वर्णन करे। वो सृष्टि का बीज रूप है। हाँ, ये सृष्टि रूपी वृक्ष उसका बीज रूप है परमपिता परमात्मा, जो हमारा बाप है। पीछे से ये जरूर बोलो कि वो हमारा बाप है। ये कहने से क्या होगा? हाँ, ये कहने से नशा रहेगा, नशा भी रहेगा और खुशी भी रहेगी। तो जो भी बाप के संबंध में बात याद करो, उस याद के साथ साथ जो भी परिचय याद करो उसके साथ साथ कि ऐसा मेरा बाप है, बाप सर्वशक्तिवान है, ये हुआ बाप का परिचय, बाप के प्रति निश्चय। लेकिन सर्वशक्तिवान मेरा बाप है। जब कहो सर्वशक्तिवान मेरा बाप है, तो देखो अंदर में कितनी खुशी होगी। और बाप के प्रति क्या निश्चय है? भाग्य विधाता हमारा बाप है, माना जो सबको भाग्य देता है, ऐसा भाग्य विधाता मेरा बाप है। अच्छा, और क्या? सर्व सर्व संबंधों का रस देने वाला है, माना सर्व संबंध मेरा उस बाप के साथ है। ऐसा बाप जिससे हमको सर्व संबंधों का रस मिलता है, ऐसा मेरा बाप है। हाँ, बाप के प्रति ये निश्चय है कि यही बाप बाप भी है और जो तीनों ही रूप, एक तो सर्व संबंध भी है लेकिन जीवन के उन्नति के लिए जो मुख्य तीन संबंध है वो एक ही बाप के साथ है। और ऐसा मेरा बाप है जो मेरा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। फिर उसकी परिभाषा करो तो बाप रूप से क्या देता है, फिर क्या क्या वर्षा देता है। हाँ, ऐसे अगर आप याद करते रहो योग में, ऐसी बातें याद आती रहे तो योग लगा रहेगा या नहीं लगेगा, खुशी खुशी से लगता जाएगा। जितना योग जैसे जैसे याद करते जाएंगे वैसे आपके अंदर में खुशी आती जाएंगी, और खुशी से जब बाप को याद करते रहेंगे तो बाप से वो आनंद, वो अतीन्द्रिय सुख या जो भी कहे, वो सर्व संबंधों का रस जितना खुशी से याद करेंगे, जितना बाप को परिचय से याद करेंगे, जितना बाप को महानता से याद करेंगे, उतना आपको खुशी होती जाएगी। और जब खुशी बढ़ती जाती है, अनुभव होता है, इस याद से हमें खुशी मिलती है, तो फिर वो बात कभी अपने से छूटती नहीं है। अर्थात इसी प्रकार अगर हम बाप को याद करते रहेंगे तो बाप की याद कभी भी हमारे से भूलेंगी नहीं, सदा उनकी याद हमारे पास बनी रहेंगी। क्योंकि जो हमें खुशी का अनुभव हुआ, अगर खुशी का पारा एक बार चढ़ गया तो वो जल्दी उतरता है क्या? हाँ, नहीं उतरता है ना। और ये चढ़ता जाएगा, चढ़ता, समझो एक घंटा आप योग में बैठते हो और ऐसे बाप को खुशी खुशी से याद, बाप का परिचय याद करते जाओ, याद करते जाओ, आपको खुशी बढ़ती जाएंगी और ऐसे खुशी के आनंद में बैठ जाएंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना समय बीता। और वो खुशी जब एक बार आत्मा वो खुशी का अनुभव कर लेती है तो फिर आत्मा से वो खुशी जाती नहीं है। कहा जाता है ना, जीवन में जो एक बार अनुभव होता है वो अनुभव कभी जाता नहीं है। तो ये निश्चय, पहला निश्चय बाप में, और बाप में भी क्या क्या निश्चय, कभी कभी जब भी आप लोग को फुर्सत मिल जाए ना, या कभी कभी ऐसा अनुभव हो योग में याद इतनी नहीं आती है, तो फिर बैठ करके वो सारा लिखो तो बाप की क्या क्या महिमा गाई जाती है, बाप की क्या क्या महानता है, बाप का हमें परिचय क्या क्या है अपने से पूछो, और क्या क्या है वो प्रश्न करने से देखो आपको क्या क्या जवाब आता है और कितने जवाब आते हैं। फिर अगर एक बार आपके पास वो जवाब आ गया, फिर उसके पीछे दूसरा तीसरा, फिर वो लाइन खुल जाएंगी। और जब आपके अंदर में ऐसा ये जवाब आता जाएगा तो खुशी का पारा चढ़ता जाएगा, और जब ऐसा खुशी का पारा चढ़ेगा तो फिर आत्मा को वो नशा भी रहता है। इसके साथ साथ जितना बाप का निश्चय होगा उतना फिर स्वयं के लिए भी निश्चय होगा। स्वयं के लिए क्या निश्चय, जब ये हमने सोच लिया ऐसा मेरा बाप है, भाग्य विधाता मेरा बाप है, वरदाता मेरा बाप है, विश्व कल्याणकारी मेरा बाप है, बाप अभी आया हुआ है और जो सारी विश्व का, बल्कि वो बाप जिसको सारी दुनिया याद कर रही है, कितना भगत याद करते हैं परंतु भक्तों को नहीं मिलता है, भगवान बच्चों को आकर के मिलता है, हमने नहीं ढूंढा, हाँ, बाबा को ढूंढ करके पाया या बाबा ने बच्चों को ढूंढा? तो हम कितने महान भाग्यशाली। तो एक रीति में बाप पर निश्चय और साथ साथ फिर अपने पर निश्चय कि हम कितने भाग्यशाली जो बाप ने आकर के हमें ढूंढा। तो जब बाप कहते हैं और बाप के संबंध में हम कहते हैं हम उनके बच्चे हैं, तो हम बच्चे कौन? परमात्मा की संतान, हम आत्मा है, ये हमें अंडरस्टूड निश्चय हो जाता है। वैसे आप आत्मा रूप में स्थित होने का अभ्यास करो तो बहुत मेहनत लगती है ना, मेहनत आत्म अभिमानी बनने में, क्योंकि देह को भुलाना, देह के बातों को भुलाना, देह के साथ जो हमारे संस्कार हैं उनको भुलाना, देह जिनके साथ संपर्क संबंध में आती है उनकी बातें याद आती है, उन सबको भुलाना, तो बड़ी मेहनत लगती है। परंतु सहज कैसे है, हमारा ज्ञान तो सहज है ना, सहज कैसे है? जब बाप को याद करो तो आत्मा स्थित, आत्मा स्वरूप में स्थित होना बड़ा सहज है, क्योंकि बाप की याद में जब हम मगन है तो ऐसा याद बाप को कौन कर सकता है जो उनके बच्चे हैं। तो उनके बच्चे कौन? हम आत्मा। तो मैं आत्मा हूं ये निश्चय भी हमें जैसे कि उसके साथ साथ बना हुआ रहता है। परंतु उसके साथ साथ फिर ये भी निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूं। जैसे बाप की हमने महानता गाई, जैसे बाप के महानताओं को याद किया, वैसे फिर हम अपनी महानता को याद करें। हम कितने भाग्यशाली हैं, क्या क्या हमारा भाग्य है, कितनी हमारी महानता है, फिर उसके साथ साथ जैसी बाप की महानता उसके साथ साथ फिर हम अपनी भी महानता मिलाते जाएं। भाग्य विधाता ने हमें कैसा ऊंचा भाग्य दिया है, फिर कौन सा भाग्य हमें दिया है उसका हम वर्णन करें अपने अंदर में, मुख से नहीं मन से। जितना मन जितना इन बातों को सोचता रहेगा, अर्थात मन का सोचना, अर्थात हमारे अंदर जितने ये श्रेष्ठ संकल्प चलते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर और कोई प्रकार का व्यर्थ संकल्प और कोई प्रकार के इधर उधर के संकल्प आएंगे ही नहीं। तो ये भी एक सहज तरीका है। आज सुनाई ना सुबह को बाबा ने कितनी विधियां बताई है, अब उनको हम कैसे प्रैक्टिस में लाएं? तो ये एक सहज विधि है आत्म अभिमानी बनने की और बाप के याद में रहने की। बाप की याद के साथ साथ हम भी कितने ऊंचे हैं, बाबा ने हमें कितना ऊंचा भाग्य दिया है, अब अपने भाग्य का वर्णन करें। सर्व आत्माओं में हम वो आत्मा है, कौन सी आत्मा? जिसको बाबा ने आकर के चुना है, जिसके ऊपर बाबा की नजर पड़ी है। सर्वशक्तिवान की अगर नजर पड़े हमारे पे तो हम कितनी महान भाग्यशाली है। भक्ति मार्ग में भाई जरा सी नजर, कैसे वो बेचारे चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, और हमारे पर बाप ने स्वयं आकर के नजर डाली है। तो हम कितने भाग्यशाली हुए, भाग्य विधाता की हमारे पर नजर पड़ी तो हमारा भाग्य तो जग गया ना। जब हमारा भाग्य जग गया फिर हमें क्या फिक्रात, फिर हम क्यों विस्मृति में आए? जब हमें कुछ न मिलता हो तो विस्मृति में आए, परंतु जब हमें इतना बाबा भाग्य देता है तो हम विस्मृति में क्यों आए? लेकिन ये तब होगा जब हम ऐसे घड़ी घड़ी बार बार पल पल पे इस प्रकार से हम अपने अंदर में ये सोचते रहे, मन इन बातों में लगा रहे, मन का काम है संकल्प करते ही रहना। कर्म इंद्रियां तो जब उनसे काम कराओ तब करती है, लेकिन मन उसकी इतनी तीव्र गति है, आप उनसे काम लो या न लो वो अपना काम करता रहेगा। परंतु बाबा कहते हैं उसका लगाम भी अपने हाथ में रखना है। क्यों? हम उनके मालिक है, आत्मा मेरा ही संकल्प है ना, क्योंकि ये संकल्प सोच मन बुद्धि संस्कार मेरी ही शक्ति है ना। मैं आत्मा, जब हम कहते हैं मन बुद्धि संस्कार मेरी ही शक्ति है, तो ये क्या दिखाता है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा इनकी मालिक है। जैसे कर्म इंद्रियों की मैं मालिक हूं, चाहूं तो मुख से बोलूं चाहूं तो न बोलूं, ऐसी शक्ति बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं में ऐसी शक्ति हो। वैसे तुम इतनी शक्तिशाली थी और फिर से ऐसी शक्ति धारण करो जो सदा अपने मन को अर्थात सदा अपने संकल्प को अपने कंट्रोल से, जो संकल्प करे इसलिए सदा ऐसे चिंतन करते रहो जो अपने आप आपका वो संकल्प चले, दूसरा संकल्प चले ही नहीं, उसकी जो तीव्र गति है वो इस रीति से चलती रहे। और जब श्रेष्ठ संकल्प अपने मन के अंदर चलने लग जाता है तो उससे आत्मा भी खुश होती है, क्योंकि आत्मा को नशा रहता है ना। क्या नशा रहेगा? कि ये सदा मेरा श्रेष्ठ संकल्प है, शुद्ध संकल्प है, मेरे अंदर कोई व्यर्थ संकल्प नहीं है। जब सदा मेरे शुद्ध संकल्प हैं, तो कहा जाता है ना, पहला स्लोगन क्या था, निश्चय बुद्धि विजयंती। तब हमारी सदा माया के ऊपर विजय है ही है। क्यों? निश्चय है, बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, और जो कुछ हो रहा है कलप पहले भी हुआ है अब भी हो रहा है, फिर अगर कहेंगे आगे भी होता रहेगा, तो कोई अच्छी बात भी होगी कोई बुरी बात भी होगी, लेकिन इसके लिए बाबा कहते हैं ये समझो कलप पहले भी, चाहे अच्छी हुई चाहे बुरी हुई, तो बुरी का हमारा चिंतन नहीं चलेगा, क्यों कलप पहले भी आगे भी हुआ है अभी भी हो रहा है, इसमें क्या चिंतन करें, चिंतन से छूट जाते हैं, उसके दुख से छूट जाते हैं। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू तो साखी हो गए ना, आज की मुरली में था ना, हाँ क्या दो बातें बाबा ने बताई युगलों के लिए, साक्षी और साथी। फिर प्रैक्टिस की कि साक्षी और साथी कैसे, हाँ प्रैक्टिस का समय ही नहीं मिला सुनते रहे और उसको अभ्यास करने का समय नहीं मिला। अच्छा, अभ्यास का समय नहीं मिला पर चिंतन में लाया, उसका समय मिला या उसका भी नहीं मिला, वो भी नहीं किया। क्यों? फिर क्लास करना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है। अब उस चिंतन के बजाय जो हम भगवान के महावाक्य सुन, जब हम कहते हैं सर्वशक्तिवान के महावाक्य, तो सर्वशक्तिवान के महावाक्य कितने ऊंचे माने जाते हैं, हाँ ऊंचे है ना भगवान के महावाक्य। पर क्या है, भगवान हमें अखुट खजाना देता है ना, देता ही रहता है, तो हम थोड़े अल बेले हो जाते हैं, खजाना तो मिलता ही रहता है ना। चलो थोड़ी बात मिस भी हो गई फिर मिलती रहेगी और खजाना मिलता रहेगा, लेकिन जिस समय जो प्रवाह रहा, जिस समय जो खजाना बाबा ने दिया, उस समय की उनकी शक्ति हमने ग्रहण की। शब्दों को तो हमने समझ लिया, ज्ञान हमारे बुद्धि में है, सारा ड्रामा का राज है ज्ञान, सारा सृष्टि का चक्कर कल्प वृक्ष की नॉलेज सब हमारे बुद्धि में है। जल्दी जल्दी हम 7 दिन में कोर्स दे देते हैं, फिर इतना समय हमें क्यों लगा, हाँ हम निश्चय बुद्धि बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, बाबा में निश्चय, अपने में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, फिर इतना समय हमें क्यों लगता है? कि निश्चय की जो महीनता है, निश्चय की परिभाषा, निश्चय माना निश्चय, परंतु हर बात में, हर बाबा के महावाक्य में पूर्ण रूप से निश्चय हो, तो उसका प्रमाण क्या है कि वो बात हम फौरन अपने जीवन में अमल में लाते जाएंगे। अगर हम फौरन अपने जीवन के अमल में नहीं लाते हैं, प्रैक्टिस में हमारे नहीं आती है और हमारे से थोड़ी भूल जाती है, विस्मृति आ जाती है, तो क्या कहेंगे? निश्चय है ना? हाँ, निश्चय तो है, कहेंगे निश्चय तो है, परंतु, फिर परंतु आ जाते हैं, माना लाइन बड़ी हो जाती है, बोलने का लंबा हो जाता है। निश्चय है तो उसमें कोई बड़ा नहीं आती है, परंतु ये जो जीवन अनेक जन्मों का खाता है, उसको भस्म करने के लिए बाबा हमें इतना खजाना देता है। तो इतना खजाना जब हमें मिलता है, उसमें हम अलबेले ना बने, उसमें हम ये समझे कि जितना बाबा देता है, उतना हमको, हम जितना अपने बुद्धि के अंदर उसको धारण करें, पहले तो बुद्धि ग्रहण करेंगी ना, जब बुद्धि ग्रहण करे, उसमें भर जाए, बुद्धि उससे परिवर्तन हो जाए, तब तो हमारी संकल्प शक्ति बदले। जब तक हमारे बुद्धि के अंदर वो ग्रहण नहीं होता है, समझ लेते हैं, बुद्धि के दो काम है, एक है समझना और दूसरा है उसको स्मृति में रखना। वो भी काम बुद्धि करती है, समझने का काम भी बुद्धि करती है, बुद्धि माना ही समझ, ऐसा कहेंगे ना, तो समझ लेते हैं, लेकिन समझ करके और उसको ग्रहण करना, अर्थात सदा स्मृति में रखना, जब बुद्धि उसको ग्रहण कर लेती है, तो ऑटोमेटिकली मन उसके ऑर्डर में चलता है, क्योंकि संकल्प कहाँ से आते हैं? संकल्प कोई आप ही नहीं उठते हैं, जो हमारे स्मृति के अंदर भरा हुआ है, सूक्ष्म करके हम इमर्ज करें या न करें, अनेक जन्मों का खाता थोड़ी हमें पता है, पर अंदर तो भरा हुआ है ना, रिकॉर्ड में अंदर, वो रिकॉर्ड ये हमारे बुद्धि के अंदर भरा हुआ है, और उसके आधार से अपने आप न भी चाहते हैं, न भी सोचते हैं, न भी विचार करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक संकल्प हमारे उठ जाते हैं। इसलिए हमें पहले अपने बुद्धि के अंदर जो बाबा खजाना देता है, उसको ग्रहण करने का पूरा लक्ष्य रखना है। जब वो हमारे ग्रहण में आता है, माना ग्रहण शक्ति हमारी जब पावरफुल हो जाती है, तो उससे हमें क्या फायदा होता है? कि आत्मा अंदर भरपूर रहती है, आत्मा को लगता है कि हाँ बरोबर, अब मैं शक्तिशाली होती जाती हूं। जो शक्ति खो गई, वो फिर से हमें शक्ति मिलती जा रही है, क्योंकि एक तो बाप मिला, और बाप जो खजाना देता है, बाप का खजाना जितना हमारे में भरता जाएगा, यानी जितना मुझे याद रहेगा, जितना मेरी स्मृति में रहेगा, अंडरस्टूड, बाप मुझे याद है, तो दोनों याद हो गए, बाप भी याद हुआ और बाप का खजाना भी याद हुआ। अब जब दोनों याद होंगे, तो उससे आत्मा अंदर भरपूर महसूस करती है, भरता जाता है ना, जो नहीं था, शक्ति नहीं थी, तो शक्ति कैसे भरी? केवल बाप मिलने से नहीं, पर बाप ने जो कुछ दिया, नहीं तो क्यों बाप हमें इतना पढ़ाता है, क्यों रोज रोज हमें इतना खजाना देता है, क्यों कहते हैं बच्चे केवल मुझे याद करो, इतना ही नहीं, पर जो मैं सुनाता हूं उसको मनन करो, बाबा बोलते हैं ना। तो दोनों बातें हमारे लिए हैं। जब हम बाप के खजाने को अपने में धारण करते हैं, तो बाप की याद स्वतः बन जाती है, सहज हो जाती है, फिर हमें याद भूल नहीं सकती, क्योंकि बाप के महावाक्य सदा याद रहेंगे और वो हमारे खजाने बुद्धि रूपी तिजोरी के अंदर वो खजाना भरा हुआ है। जिस समय हमें जो बात चाहिए वो हम खजाने से निकाल लेंगे ना, क्योंकि भरा हुआ है, हमें पता है ना। तो भरपूर होने के कारण आत्मा शक्तिशाली अनुभव करती है, और जब आत्मा शक्तिशाली अनुभव करती है तो ये हमें नशा रहता है। तो केवल निश्चय ही नहीं, विजय हमारी होती है, क्योंकि विजय का भी नशा चाहिए और विजय पाने के लिए शक्ति चाहिए। केवल निश्चय ही से ही विजय नहीं होती है, पर निश्चय बुद्धि विजयंती, इसका अर्थ ही ये है। क्योंकि जितना हमें निश्चय होगा उतना हम बाप को याद करते रहेंगे ना, वो याद हमारी सुतह बन जाती है ना, नेचुरल। तो जब बाप सदा याद है तो आत्मा शक्तिशाली हो जाती है ना। तो आत्मा शक्तिशाली कैसे बनती है, कि जो बाप से हमें खजाना मिलता जाता है वो हम अपने में भरते जाएं, अर्थात बुद्धि के द्वारा, क्योंकि बुद्धि भी आत्मा की ही शक्ति है ना। बुद्धि के द्वारा हम अपने अंदर वो बाप का खजाना भरते जाते, और जितना हमारे में भरता है उतना आत्मा शक्तिशाली होती है। जितनी हमारे में शक्ति आती है उतना अंदर से हमें वो नशा बना रहता है। वो नशा नहीं जिसको अहम कहा जाता है, वो नशा नहीं जो हमें अहम भाव में ले आए और गिरा देवे, परंतु ये शुद्ध नशा, बाप से मिली हुई शक्ति का नशा, बाप से मिले हुए खजानों से प्राप्ति हुई उस प्राप्ति का नशा। तो निश्चय के साथ जितना हमारे में नशा रहता है उतना नशा होने से ही हम विजय पा सकते हैं। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है, जैसे भाई जो जिस कुल का होता है, जो अच्छे बड़े नामी ग्रामी कुल का होता है, तो उसको बचपन से रहता है, मैं फलाने कुल का हूं, मैं फलाने बाप का हूं, कितना फखर से बोलता है छोटा बच्चा, पर उसमें फखर है, क्यों, मैं फलाने बाप का बच्चा हूं। ऐसे जब हमारे अंदर से ये निकलता है, अर्थात अंदर में हमें ये स्मृति रहती है, हम फलाने बाप के बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। लेकिन सर्वशक्तिवान के बच्चे तो हैं, पर हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं, जैसे बाप ज्ञान का सागर है और हम भी, वैसे हम आत्मा के परिचय में बताते हैं ना, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, जो बाप के गुण बताते हैं उसी के संबंध में आत्मा का बताए। तो जब हम ऐसा बनते जाएंगे तब तो हमारे में शक्ति अनुभव होगी। शक्ति तो केवल कहने से नहीं आती है ना, शक्ति प्रैक्टिकल रूप से होती है। जैसे शरीर में शक्ति, तो वो भी शरीर अगर शक्तिशाली है तो वो उसके कार्य से पता चलेगा कि शक्तिशाली है। ऐसे अगर कहे हाँ मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, और वो कर न सके, कमजोर हो और फिर गिर पड़े, तो शरीर की शक्ति भी प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। आत्मा के शक्ति का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि फिर कोई भी माया उसको हरा नहीं सकती, उसकी हरेक के ऊपर विजय होती रहेगी। अर्थात उसके पास जो सदा शुद्ध संकल्प उठते रहेंगे, वो शुद्ध संकल्प सदा उनके सिद्ध होते रहेंगे। कोई व्यर्थ आया नहीं ना जो उसको कमजोर बनाए, क्योंकि कमजोर, मुझ आत्मा को कमजोर कौन बनाता है, माया नहीं बनाती है, अपने ही व्यर्थ संकल्प हमें कमजोर बनाता है। कमजोरी हमारे में कहां से आती है, अपने से ही आती है ना, कमजोरी अपने आप से आती है ना, कोई और तो नहीं कमजोरी को देता है ना। तो अपने आप हमारे में कमजोरी कैसे आती है, कि हमारे संकल्पों की शुद्धता न होने के कारण, संकल्पों में श्रेष्ठता न होने के कारण अनेक प्रकार के और ख्यालात आते रहते हैं, तो वो हमें अंदर ही अंदर, बाहर से नहीं, क्योंकि आत्मा भी सूक्ष्म है, तो वो अंदर आत्मा को कमजोर बना देता है। और अंदर कमजोर होने के कारण वो सदा विजयी नहीं बन सकता है। कभी विजयी बनेगा तो कभी हार भी खाएगा, क्योंकि अंदर कमजोर ही है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं इसका प्रमाण है। कौन सा प्रमाण? आत्मा शक्तिशाली है, आत्मा भरपूर है, आत्मा को बाप से प्राप्ति हुई है, प्राप्तियों का अनुभव है, इसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण अपने में देखने का पहला सूक्ष्म कि हमारे सदा शुद्ध संकल्प चलेंगे, श्रेष्ठ संकल्प रहेंगे, हमारे में इधर उधर का कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। चलो हम समझो किसकी कोई बात देखते भी हैं, परंतु उस पर हमारा चिंतन नहीं चलेगा। देखते हुए बाबा कहते हैं ना, न देखो जिस बात में हमारा काम नहीं है, जिस बात से मेरा संबंध नहीं, उस बात को हम सोच के क्या करें, क्यों सोचें? ये एक नेचुरल अपनी धारणा बनी हुई होती है। तो ये नेचुरल धारणा होने के कारण आत्मा की शक्ति वेस्ट नहीं जाती है और आत्मा शक्तिशाली अनुभव करती है। शक्तिशाली अनुभव करने के कारण उसको सदा वो नशा रहता है। एक तो मनसा सदा उसकी श्रेष्ठ रहती है और दूसरा सदा उसको नशा रहता है। वो नशा आत्मा के शक्ति का प्रमाण है और वो नशा होने के कारण उसका सदा जो संकल्प चलेगा ना, वो बाप के महानताओं का ही चलेगा। और जो बाप का कर्तव्य है, उन कर्तव्य के अर्थ उनके संकल्प चलेंगे और कोई उनके संकल्प नहीं। भले आप लोग व्यवहार में रहते हो, दुनिया में रहते हो, व्यवहार के निमित्त जितना जरूरी है उतना चले, उतना तो चलाना ही पड़े ना, नहीं तो व्यवहार कैसे करेंगे। परंतु व्यवहार में भी हमारी श्रेष्ठता काम करती जाएंगी, क्योंकि हमारे संकल्पों का जो रूप बन गया वो श्रेष्ठ हो गया ना, तो व्यवहार में भी वो श्रेष्ठ संकल्प हमको मदद करते रहेंगे। किस प्रकार से व्यवहार हमारा शुद्ध रहे, हमारे व्यवहार से सब खुश हो, हमारे व्यवहार से उन्हों को ये महसूस हो कि ये किसके बच्चे हैं। अपने ऐसे ही विचार चलेंगे जिससे अपने व्यवहार में शुद्धता आती जाएगी, व्यवहार में भी श्रेष्ठता आती जाएगी। क्योंकि सदा हमारा ये रहेगा कि हमारी जीवन ऐसी, हम जिस बाप के बच्चे हैं, जो बाप हमें सिखाता जाता है हमें वो ही करना है। जब हम वो ही करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली देखने वालों को हमारी चलन से, बाबा हमेशा नहीं कहते हैं, बीच में भी याद होगा कि बाबा ने कहा कि आप लोग चलते फिरते म्यूजियम हो, वो म्यूजियम बनाते हो चित्रों का, लेकिन आप लोग चलता फिरता म्यूजियम, चैतन्य है ना, चैतन्य म्यूजियम हो, चैतन्य म्यूजियम जैसे चित्र को देख करके उसको हम आत्मा परमात्मा का परिचय देते हैं, वैसे वो हमको देख करके हमारे अंदर वो जो रूहानी नशा है, हमारे नैनों में जो रूहानियत भरी हुई है, हमारे मुख से जो ईश्वरी बोल निकलते हैं, वो उनको परिचय कराएगा कि हम भी कौन है और हमारा बाप कौन है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा अपनी चलन रॉयल रखो। रॉयल कोई स्थूल में नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी अच्छी जगह पर बैठना है, इसको रॉयल नहीं कहा जाता है। परंतु रॉयल चलन अर्थात, रॉयल चलन का मतलब दैवी गुण संपन्न हमारी चलन हो, हमारी चलन के अंदर दिव्यता हो। पवित्रता तो हमारे जीवन में है, लेकिन वो सूक्ष्म बात हो गई ना, वो अपने तक बात हो गई, परंतु पवित्रता के साथ साथ हमारे कर्मों में दिव्यता हो। और दिव्यता आती है जब हमारे कर्म अर्थात जो भी हमारा व्यवहार है वो दैवी गुणों से भरपूर है, चाहे बोल में चाहे दृष्टि में। दृष्टि में भी वो दिव्यता हो, रूहानियत हो, सदा दृष्टि के अंदर चलो हम देखते हैं, देखती तो आंखें हैं लेकिन आंखें देखने वाली और उसकी वृत्ति जो बनती है, क्योंकि देखने वृत्ति का असर दृष्टि पर और दृष्टि का असर वृत्ति पर आता है ना। ऐसा कुछ देखो तो एकदम मन के अंदर वो भाव आ जाता है ना, और जो भाव हमारे अंदर होगा हम देखेंगे, उस भाव से देखेंगे तो जैसी हमारी वृत्ति होगी ऐसी हमारी दृष्टि बनेगी। और दृष्टि वो तो कहा जाता है जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। तो अगर हमारी वृत्ति में रूहानियत है, कौन सी बाबा ने रूहानियत बताई है हाँ? हमारी वृत्ति में दृष्टि के प्रति रूहानियत कौन सी कि हमारी वृत्ति में सदा ये रहे कि हम सब एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, जिसको हम कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, ये हमारी दृष्टि बन जाए, है वृत्ति की बात। परंतु जब ऐसी वृत्ति बन जाती है तो ऑटोमेटिकली भले हम देखेंगे फौरन हमारी बुद्धि में ये आएगा, फौरन हम ये सोचेंगे ये भी तो आत्मा है, क्योंकि हमारी स्मृति बनी हुई है। तो स्मृति वृत्ति दृष्टि इन सब के अंदर हमारी दिव्यता है, रूहानियत हो। तो ये रूहानियत ये दिव्यता औरों को ये अनुभव कराएंगी कि ये किसके बच्चे। 3 मिनट का ही ट्रैफिक कंट्रोल है और 3 मिनट के अंदर कितने मिनट याद ठहरती है हाँ? 2 मिनट, 2.5 मिनट या 3 मिनट बरोबर, क्या कहेंगे हाँ? जवाब नहीं देते है, इसका मतलब 3 मिनट नहीं ठहरती है, 2 मिनट हाँ? अभी कितने मिनट रही हाँ? अभी 3 मिनट रही या अभी भी कम? अभी तो 3 मिनट रहनी चाहिए हाँ? बल्कि जबकि हम वो ही बातें सुन रहे हैं, अभी और कहाँ ध्यान है क्या, बुद्धि में और कोई बात है क्या, है क्या? नहीं ना, बाबा की बातें सुन रही है, बाबा के प्रति वो अंदर में बातें चल रही है, और फौरन जब ट्रैफिक कंट्रोल आ गया तो बाबा के सिवाय और कौन। जब उनकी बातें सुन करके और हम गदगद हो रहे हैं तो उस गदगद होते होते बाबा को याद किया तो उसमें तो और संकल्प आना ही नहीं चाहिए ना, आ ही नहीं सकता है। ये अपनी दृढ़ता बनाओ, ये पक्का लक्ष्य रखो कि दूसरा कोई संकल्प आ ही नहीं सकता है मेरे पास, क्यों आएगा। विजय पैनी है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। जब हम निश्चय बुद्धि है तो विजय हमारी है ही है, और व्यर्थ संकल्प मेरा ही संकल्प व्यर्थ क्यों चलेगा। बस बाबा का ही संकल्प है, बाबा के हैं, बाबा की बातें सुन रहे हैं और उनकी याद में बैठ जाते हैं। तो कम से कम जब क्लास में बैठे हैं तब तो मैं नहीं समझती हूँ और कोई संकल्प उठ सकता है। अभी 2 मिनट क्या, 3 मिनट क्या है ये उसके याद में, उनके सिवाय और है कोई संकल्प है? है पीछे वाले हाँ? पीछे वालों को सुनने में मजा आता है या आधा सुनते आधा नहीं सुनते है? आगे वालों का तो ध्यान रहता है, वो भी समझते हैं हमें देख रहे हैं तो जरा अलर्ट रहेंगे, और पीछे वाले उनको तो कोई पूछो तो भी आवाज उनका नहीं पहुंचेगा तो वो मजे से बैठे हैं सुनकर, सुनते रहते हैं आराम से, वो बोझ है ना सिर पे आता है सुना इस पीछे वाले बोलो हाँ, मजा आता है सुनने में, आता है मजा। 3 मिनट बाबा की याद ठीक रहती है या 2 मिनट, 1 मिनट, कितना मिनट? 3 मिनट, 5 मिनट। अच्छा, अभी घड़ी आगे चलती है। अब आते हैं कि ऐसे निश्चय बुद्धि, ये हमें पक्का लक्ष्य हो, हम निश्चय बुद्धि हैं, हमारी विजय है ही है। अब किस बात पर विजय? विकारों पर तो विजय मोटे रूप से तो पा ली। अब जो महीन सूक्ष्म सूक्ष्म रूप विकारों का है, वो भी कहने में सूक्ष्म आता है, लेकिन वो भी कोई कम नहीं। सूक्ष्म तो और भी पावरफुल होता है। मोटा रूप तो जल्दी खत्म हो गया, लेकिन महीन रूप खत्म नहीं होता है, माना वो पावरफुल है ना। हाँ, तो अब उससे मैं महीन हूं, मैं उससे सूक्ष्म हूं। आत्मा कितनी सूक्ष्म है? अति सूक्ष्म, बिंदु के समान, परंतु है ज्योति स्वरूप, ज्योति प्रकाश। छोटा सा प्रकाश भी अंधेरे को मिटा देता है ना, छोटा सा प्रकाश। अंधेरा हो, एक दीपक जगा हो, तो भी रोशनी थोड़ी बहुत हो जाएगी ना, माना अंधेरा तो मिट गया ना। तो हमारा छोटा सा प्रकाश नहीं है दीपक जैसा, हाँ? हमारा तो प्रकाश अखंड है, अविनाशी है, तो उसके आगे अंधेरा रह नहीं सकता है, ये हम अपने अंदर दृढ़ता बनाएं। लेकिन अंधेरा मिटाने की सहज विधि, मिट जाए चाहे महीन कमजोरियां भी हो, वो भी सहज मिट जाए, उसकी सहज विधि देखे कौन बताता है? कौन बताता है? हाँ, देखो कौन बताता है? अभी जब जवाब सुनेंगे ना, कहेंगे अरे ये तो हम बता भी चुके हैं। हाँ बोलो, देखे ये आगे आगे लाइन बैठी है सब बुजुर्गों की, बड़े बड़े पुराने भाई, वो बताए कोच पर पुराने पुराने भाई बैठे हैं बुजुर्ग। सहज विधि, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को मिटाने की सहज विधि। जैसे मोटे रूप से हमने विकारों को खत्म कर दिया, नॉलेज सुनी हमको ठीक लगी, और उसी के आधार पर हमने मोटे रूप से विकारों को छोड़ दिया। अब सूक्ष्म कमजोरियों को मिटाने की विधि, शुद्ध संकल्प चलना, संस्कार परिवर्तन तो टोटल हो गया ना। क्या बोला? स्वमान में रहना। और बोलो, उसकी सहज विधि है हर कदम श्रीमत पर चलना। कितनी सहज बात है मुश्किल? और श्रीमत पर तो हम चल ही रहे हैं, उनके सिवाय हम कहाँ चलते हैं। पर ये दृढ़ता हो, कोई भी बात, माना जो बाबा श्रीमत देता है वो हमें प्रैक्टिकल में लानी है। जैसे मानो अभी अब बाबा ने हमें तपस्या वर्ष दिया है, अंदर में हमारी ये लगन हो। तपस्या वर्ष किस लिए बाबा ने दिया है? संपूर्ण बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए। जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, वो ओरिजिनल रूप केवल हम अंदर ही अंदर अनुभव करें नहीं, पर वो हमारा प्रत्यक्ष हो। जैसे साकार बाबा का रूप हमने प्रत्यक्ष देखा ना, जिसके आधार पर इतना सारा यज्ञ स्थापन हुआ और ये सारा कार्य चल रहा है। अगर साकार रूप बाबा का न होता तो यज्ञ स्थापन होता? भले अभी अव्यक्त से कार्य करता है, लेकिन शुरुआत बाबा को भी, शिव बाबा को भी साकार लेना पड़ा ना। और साकार वो लिया, ऐसा तो नहीं पहले वो संपूर्ण होगा। अज्ञान काल में भले हम बाबा की हिस्ट्री सुनते हैं कि बाबा की जीवन में दैवी गुण थे ही कई बातों के, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा ना। परंतु बाबा की प्रवेशता से बाबा जैसे कि हम लोगों ने सदाई बाबा को संपूर्ण देखा, अर्थात शिव बाबा की जो महिमा है वो बाबा की महिमा माना वो महानता हमने ब्रह्मा बाबा के कर्मों में देखी, जिस कारण आज भी ब्रह्मा बाबा के कर्म चरित्र के रूप में आप लोग सुनते हो ना। भाई हमें हिस्ट्री सुनाओ बाबा की, क्यों बोलते हो, क्यों सुनते हो और सुनने में अच्छा लगता है, क्यों? केवल पुरानी नहीं लेकिन बाबा की प्रवेशता के बाद बाबा ने कैसे कैसे कार्य किया, पर कराया तो साकार के द्वारा ना। ऐसी ही रीति से हम भी अपने में ये लक्ष्य रखें कि हम साकार में, बाबा भी बोलते हैं ना, अभी अव्यक्त बाबा हमको ये लक्ष्य देता है ना, ऐसे समझो मैंने इसमें प्रवेश किया है। और सचमुच आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, शुरू शुरू में हम लोग ऐसे ही समझते थे कि शिव बाबा ने बाबा में प्रवेश किया है और हम भी बाबा के साथ साथ आए हैं। अभी हम ये नहीं समझते थे हम दुनिया में रहने वाले परिवर्तन हुए हैं, हम भी समझते थे कि हम बाबा के साथ अभी आए हैं और हमने आकर के बाबा के कार्य के लिए हम बाबा के साथ साथ कार्य में लगे हुए, जिस कारण क्या हुआ, जो भी पुराना था वो एक धक से भूल गया और पुराना भी भूला तो अपना भाव स्वभाव, उस दिनों में तो हमारे पास ये शब्द भी नहीं थे, अभी अनेक है, वैरायटी है, वैरायटी प्रकार से है, कोई प्रवृत्ति में रहने वाला, कोई नौकरी वाला, कोई कैसा, वैरायटी प्रकार है ना। तो जब वैरायटी के साथ रहो तो वैरायटी प्रसिद्ध हो जाती है। और जब बाबा ने पहले यज्ञ रचा तो एक ही प्रकार रहा ना, क्योंकि सब हम बाबा के साथ यज्ञ में ही रहे, क्योंकि ये भी हिस्ट्री में भी सुनते हो ना, पहले जब यज्ञ रचा तो ब्राह्मणों को तपस्या करनी पड़े ना, तभी तो वायुमंडल शुद्ध हो, तभी तो फिर बाबा का कार्य इतना विस्तार को पाए। भले पहले टाइम लगा लेकिन अब जो जल्दी जल्दी वृद्धि होती है, बाबा अभी सूक्ष्म में इतनी जल्दी वृद्धि करा रहे हैं और जो कुछ होना है वो बाबा ने शुरू में ही, शुरू से ही, जैसे कि बाबा की वाणी में हम सुनते आ रहे हैं और वो सब अभी प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में देखते जा रहे हैं। तो ये जो शुरू में बाबा ने अपने ब्राह्मणों को तपस्या में बिठाया और बाबा वो ही अनुभव अभी सबको करा रहे हैं, 14 वर्ष के बदली 14 मास। इसके अंदर हम अपनी ये दृढ़ता रखें। अब बाबा ने ये वर्ष हमें संपूर्ण बनने के लिए दिया है कि जो भी छोटी मोटी कमियां हैं अब वो हमारी कैसे निकलेंगी, बाबा की क्या क्या श्रीमत है। वैसे तो श्रीमत मोटे मोटे रूप में तो वैसे अभी भी चंद्रमयी दादी ने कल सुनाई ना, मर्यादाएं और ये सब, तो मर्यादाएं और नियम श्रीमत के आधार पर ही बने हुए हैं। मर्यादाएं कही जाती है परिवार के संबंध से, क्योंकि परिवार के संगठन में हम चलते हैं तो उसमें बड़े छोटे पहले आए पीछे आए ये सब बातें होती हैं, तो मर्यादाएं परिवार के संबंध में कही जाती है और नियम पढ़ाई के संबंध से कहा जाता है। तो दोनों प्रकार से ये बाबा की श्रीमत के अनुसार बने हुए हैं। तो सहजते सहज तरीका है, जो भी हमारे नियम और मर्यादाएं बनी हुई है अगर उन्हीं बातों को लेकर और हम उस एक एक पर अपना पूरा ध्यान देकर के अपन को चलाते जाएं, तो उसके अंदर जो भी विपरीत बातें उनकी हमारे में होंगी, अगर हम नियमों पर चलते रहेंगे तो विपरीतता तो खत्म हो जाएंगी ना, रहेंगी खत्म हो जाएंगी ना, परंतु कोई भी नियम का हम पालन नहीं करेंगे तो हमारे में वो विपरीतपन रह जाता है, अर्थात जिसको कहेंगे अपना भाव स्वभाव कहो अथवा संस्कार कहो, तो आजकल ये शब्द हमारे पास कॉमन हो गया है, पर ये तो पुराना संस्कार है ना। लेकिन ये शब्द हम खत्म ही कर दें, हम कहें ही नहीं कि ये पुराना संस्कार या ये हमारा स्वभाव है। किसका स्वभाव? पुराना कौन सा? हम पुराने हैं? हम अपने को ही, अपने बुद्धि से ये शब्द ही परिवर्तन कर ले। हम जब जब कहते हैं बाबा के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, और ये भी कहते हैं ना हम बाबा की पहली रचना है। पहली रचना कितनी पावरफुल होती है, और पहली रचना किसकी? वृक्षपति की पहली रचना। वैसे भी देखो झाड़ जब पहले शुरू होता है तो कितने कोमल अच्छे पत्ते होते हैं, तो हम पहली रचना कितनी सुंदर, सत्य को याद करो। तो ऐसी दुनिया बनाने वाले हम पहली रचना है, ब्राह्मण, ब्राह्मण सबसे ऊंचे। ऐसी ऐसी बातें अगर हम अपने मन में दोहराते रहें, केवल हमारी कमी कहाँ होती है कि कभी कभी हम इन बातों को अधिक अपने मन में दोहराते नहीं है। कभी कभी क्या, लेकिन अधिकतर हम इन बातों को सदा दोहराते रहे, सारा दिन हमारे बुद्धि में ये चलता रहे, ये नहीं चलता है। क्लास में रोज जाते हैं, सुनते हैं, थोड़ा सा कभी उस पर सोच लेते हैं, लेकिन अब प्रवृत्ति में है, व्यवहार में है, अपने काम काज बढ़ गए हैं। एक तरफ प्रवृत्ति लौकिक, दूसरे तरफ अलौकिक सेवाएं, तो दोनों बड़ी हुई है, तो उनके संकल्प अधिक चलते हैं। लेकिन स्वयं के उन्नति के, स्वयं के दिव्यता के संकल्प, बाबा ने जो कहा वो स्वयं में कैसे धारण होते जाए, ये संकल्प, ये चिंतन थोड़ा कम चलता है। अगर उसके साथ साथ सेवा के साथ साथ प्रवृत्ति के साथ साथ, क्योंकि संकल्प तो एक ऐसी शक्ति है, जितने चलाओ, जरूरी नहीं है एक चलाओ दूसरा नहीं चल सकता है। कथे कथे जितने भी चलाओ, सिर्फ लक्ष्य हो अपना, और सिर्फ वो बात अपने बुद्धि के अंदर भरी हुई हो कि ये करना है। अगर ये लक्ष्य हमें पक्का है, अगर इन्हीं बातों का हमारे अंदर चिंतन चले, जो मैं बाबा की बात सुनूं, अपने से लगाते जाएं, सुनते समय तो उमंग आता है, सुनते समय बड़ा, उस समय जैसे अपने से लगाते हैं, और कभी कभी समझते हैं ये तो बहुत अंतर है। ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये कैसे हम ऐसा बने, कभी तो ऐसा इतना अंतर है कैसे मिटेगा, कहां संपूर्णता, कहां अभी हम प्रवृत्ति में फंसे हुए, ऐसा ऐसा भी सोच लेते हैं, तो फिर अपने में थोड़ा और कमजोरी आ जाए, समझते ये मुश्किल है इतना हमारे लिए संपूर्ण बनना। वो सूक्ष्म संकल्प हमें श्रेष्ठ बनने में बाधा डालता है, इसलिए हम सदा वो संकल्प करें। बाबा हमें संपूर्ण बनाने के लिए आया है, बाबा हमें संपूर्ण बना रहा है, बाबा हमें संपूर्णता की बात देते रहते हैं, हम उन्हीं बातों को लेते जाएं, क्यों नहीं बनेंगे? दृढ़ता का संकल्प अपने में हिम्मत पैदा करता है, और हिम्मत एक ऐसी शक्ति है, कहा जाता है हिम्मत है बच्चे, और बाबा कहते हैं मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। साथी बन के बना के रखो ना, जब साथी हमारा बाबा है तो मैं क्यों हिम्मत हार लेता हूं? ये भी तो हार खाना है ना, ये भी तो विजय पाना नहीं है ना, तो हम तो विजयी है ना, हम हारे हुए नहीं है, हमें हार नहीं खानी है, परंतु हमें विजयी बन के रहना है। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें संपूर्ण बनना है, हम अपन को संपूर्णता के ओर ले जाएं। जब हमने रास्ता संपूर्णता का पकड़ लिया, चलो काम बीच में थोड़ा समझो रुक जाते हैं, लेकिन वो ही रास्ता ले लिया तो हमारे में वो बातें आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी। हम मिक्स ना करें, व्यवहार अपना चलता रहता है, व्यवहार के समय व्यवहार है, लेकिन सदा चिंतन में तो व्यवहार को नहीं रखना है ना। चिंतन में क्या रखना है? चिंतन प्रभु का करना है, बाप की श्रीमत का चिंतन करना है, बाप के शिक्षाओं को सदा याद रखना है। बाप की पढ़ाई समझ में आ गई वो अलग बात है, लेकिन समझ में आ गई उसका प्रमाण है हम उनके आज्ञाओं का पालन करते रहे। वैसे भी देखो आम रीति से देखा जाए जीवन का ये नियम है, जीवन का ये नियम है, बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, पढ़ाई उसके बुद्धि को विशाल करती है, लेकिन चलन उनके माँ बाप के आज्ञा पर होती है। चलन अच्छी या बुरी वो माँ बाप की पालना पर आधार होते हैं, और पढ़ाई से बुद्धि विशाल होती है, फिर जितना बड़ा होता जाता है तो वो बुद्धि उसको काम आती है। परंतु चलन में जो शुरुआत में पालना का बीज पड़ जाता है, कोई में कोई बच्चे में समझो छोटेपन से कोई बुरा संस्कार पड़ जाता है तो कितनी उसको मेहनत करनी पड़ती है तो भी बड़े होते भी वो नहीं छूटता है। तो अभी हम अपन को समझे कि हमने ये नया जन्म लिया है, जब हम बाबा के बच्चे हैं तो हमारे जीवन का आधार पालना पर है। जो बाबा हमें पालना दे रहे हैं, अर्थात जो हमें आज्ञा मिलती है, जो हमें शिक्षाएं मिलती है, भले पढ़ाई और शिक्षाएं मिली हुई है हमारी, लेकिन फिर भी जो बातें हमारी केवल बुद्धि तक समझ, जैसे भाई कल्प वृक्ष की नॉलेज है, ड्रामा की नॉलेज है, तो इससे हमारे टोटल समझो हमको नॉलेज हमारी बुद्धि को विशाल दूरांदेश कर देती है। कल्प पहले क्या हुआ था सारी बातें हमारे बुद्धि में आ जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये पढ़ाई और पढ़ाई से शिक्षा क्या है बाबा इसमें हमें शिक्षा क्या देता है? बच्चे ये स्मृति रखो, मैं वो ही कौन आदि देवता हूं, वही कल्प पहले वाला जो मेरा देवता स्वरूप गाया और पूजा जा रहा है वो ही मैं हूं। तो ये वो एक तरफ नॉलेज हो गई, और दूसरे तरफ बाप की शिक्षा कहे अथवा बाप की आज्ञा है बच्चे ये स्मृति में रखो, तो उस आज्ञा का हम पालन करें। नॉलेज से हमने जान लिया, पर आज्ञा का पालन करें कि नहीं ये हमें स्मृति रखनी है। ये तो समझ में आ गया बरोबर हम थे 5000 वर्ष पहले, ऐसे चक्कर लगाया 84 जन्म लिया, अभी आकर कलयुग में पहुंचे, कलयुग का अंत आ गई, बाप आ गया, सारा चक्कर हमने घुमा लिया। चलो बुद्धि में वर्णन किया, लेकिन मुझे उससे फायदा क्या हुआ? तो उससे मुझे ये फायदा है कि जो इसमें बाप की शिक्षा है बच्चे ये स्मृति में रखो, मैं वो ही आदि सत्युग में मैं देवता हूं, और अभी तुम्हें इस पराई से देवता पद पाना है। अब पद पाना है कैसे पाएंगे? जब यहां इतने दिव्य बनेंगे, तो दिव्य बनने के लिए जो बाबा की हमें श्रीमत है और श्रीमत को सहज पालन करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को नियम बना के दिए हैं, मर्यादा परिवार में हो तो इस मर्यादाओं से चलो, और ये अपने जीवन के लिए, वैसे भी जीवन के लिए नियम तो होते हैं ना। चलो देखो लौकिक में कोई कितना भी व्यवहार करता है, कितना भी कुछ करता है, परंतु फिर भी अपने जीवन के लिए कोई होते हैं, सवेरे सवेरे उठ करके भक्ति करते हैं, हर एक का अपना अपना नियम कुछ न कुछ होता ही है ना। टाइम पर खाना खाना, ये करना, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, दिनचर्या अपनी बनी हुई होती है, तो जीवन के लिए नियम तो आवश्यक है ना। इसी प्रकार से हम अपनी दैवी जीवन बनाने के लिए जो बाबा हमें नियम देते हैं, जिसको हम श्रीमद कहते हैं, श्री मत को सहजम पालन करे। क्यों कभी कभी हम सोचते हैं ना बाबा ऐसी ऐसी जो ऊंची स्टेजेस बताते हैं उसके लिए हम सोचते हैं ऐसी स्टेज में हम कैसे बैठेंगे, लेकिन ऐसी स्टेज में हम कैसे बैठेंगे नहीं, अगर हम नियम से करते आते हैं, हम सवेरे उठ करके बाबा को याद करते आते हैं, चलो भाई अभी शुरुआत में इतना योग नहीं लगता है, परंतु अगर हम नियम से करते हैं और दृढ़ता से करते हैं तो क्यों नहीं योग लगेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन बाबा योग लगाने की विधियां बताते जाते हैं और उस विधि को हम अमल में लाते जाएं, उस श्रीमत को हम पालन करते जाएं, वो हम अभ्यास करते, जैसे अभी हम अभ्यास करते हैं ना, रोज हमको स्मृति मिलती है, कहां तक हरे करता है वो हरे की बात है, लेकिन फिर भी उस स्मृति को हम याद करते हैं ना, रोज टाइटल हम सुनते हैं, चलो उस समय याद किया, फिर बीच बीच में याद करेंगे भाई हमको समय निकाल के योग में बैठना है, उस समय वो टाइटल वो स्मृति याद करते हैं ना, तो ऐसा करते हैं ना, तो आकर करते करते हम नहीं उसमें एबल बन जाएंगे, माना हमारा योग तो लग ही जाएगा ना, परंतु इसके लिए एक अपना अंदर का निश्चय, निश्चय की भी दृढ़ता, निश्चय तो निश्चय है पर निश्चय दृढ़ हो, जिसको अटल विश्वास कहा जाता है, कहा जाता है ना अटल विश्वास को कोई भी हिला नहीं सकता है, कोई भी इसके विश्वास को तोड़ नहीं सकता है, अगर हम ऐसा अटल विश्वास रखते हैं जबकि हमें बाबा में पूरा निश्चय है, हम मानते हैं बाबा में हमारा निश्चय है, तो अटल निश्चय कहां तक, जो बाबा कहे हम करते जाए ना, क्या मुश्किल आती है देख लेंगे, और आएंगी तो बाबा तो बैठा है ना, ये निश्चय का प्रमाण, और नहीं तो फिर उस श्रीमत को हम अपनी परिस्थिति के अनुकूल सोचते हैं तो हमें मुश्किल भी लगता है और कर भी नहीं पाते, नहीं कर पाने का कारण कि हम श्रीमत को पालन करने के लिए पहले परिस्थिति जो है उसको खड़ा कर देती है, देखने में हमें परिस्थिति आती है, पर हमेशा बाबा कहते हैं स्व स्थिति की शक्ति से परिस्थिति को परिवर्तन करो, बाबा ने भी तो आकर के हमें परिवर्तन किया ना, बाबा की शक्ति से हम परिवर्तन हुए, क्योंकि बाबा की हम बच्चों के प्रति यह दृष्टि रही, ये मेरे बच्चे हैं, बाबा ने उस दृष्टि से हमें ये पहचान दी, हे बच्चे, जब बाप कहते हैं हे बच्चे, नहीं तो हम बाप को जानते थे क्या, परमात्मा को जानते थे पहचानते थे, पर परमात्मा कहे हे बच्चे तू मेरी संतान हो, तू तो आत्मा हो, तो आत्मा को स्मृति आ जाती है, अरे ये कौन बोलता है, मैं तो सचमुच उसको ढूंढ रही थी, तो बाप ने अपनी शक्ति से अपनी दृष्टि से अपनी पावर से हमें पहचान दी और आत्मा में वो जागृति आई, जब जागृति आई अब आत्मा को अपनी पावर यूज करनी है, लेकिन श्रीमत के आधार पर हमें ये सहज है, क्योंकि बाप साथ हैं, सदा कदम कदम पर श्रीमत देते ही रहते हैं, कदम कदम कैसे चलो बताते ही रहते हैं, चलो हमें डिफिकल्टी होती है बाबा कहते हैं कहां भी मूंझो तो मेरे से पूछ लो, अगर हमारा योग पावरफुल है तो हमें योग के द्वारा भी उसका जवाब मिल जाता है, पर पहले अपने योग के द्वारा जवाब नहीं, पहले तो वेरीफाई कराते रहो साकार में, जब उसमें हम वेरिफिकेशन मिल जाए, हाँ तुम्हारी लाइन क्लियर है ठीक है, तो हम उसमें आगे बढ़े, नहीं तो जब है साकार में तो हम श्रीमत लेते रहे, जो मिलती है उसको पालन करते रहे, जहां मुंझे तो पूछ करके श्रीमत लेते रहे, तो हर एक के लिए, क्योंकि हर एक की परिस्थितियां अपनी, हर एक के सर्कमस्टेंसेस अपने, हर एक की शक्ति अपनी, हर एक की सोचने की धारा अपनी, इसलिए बाबा कहते हैं कहां भी मूंझो तो बाबा से पूछो। और वो तो समय समय पर मधुबन में आते ही हैं, और अगर कहां भी ऐसी जरूरत है तो बाबा के निमित्त बने हुए दादी तो बैठी ही है, लेकिन फिर भी पहले हम अपनी योग पर, जैसे ज्ञान को हमने अच्छी रीत समझ लिया, अभी हम अपनी योग पावर को बढ़ाएं। श्रीमत को पालन करने के लिए श्रीमत को पूर्ण रूप से जीवन में धारण करने के लिए हमें योग की भी आवश्यकता है। ज्ञान और योग ये हमारी दो मुख्य सब्जेक्ट है। धारणा और सेवा भी साथ में है, लेकिन धारणा का संबंध दोनों से है और सेवा का संबंध भी दोनों। जितना हम ज्ञान और योग में, जितना योग में प्रवीण है और ज्ञान भी अच्छी रीत सुना सकते हैं, तो उतनी सेवा में सहज सफलता मिलती है। केवल ज्ञान में प्रवीण है तो दोनों होती है, कभी कैसे, पर योग में भी प्रवीण है तो सफलता मिलती ही है। तो उनका तो इन दोनों से तो ये जो दो मुख्य बातें हैं, ज्ञान को हमने अच्छी रीत धारण कर लिया, अभी बाबा कहते हैं जितना ज्ञान को अच्छी रीत समझ लिया है उतना योग को भी अच्छी रीत अपने जीवन में धारण कर लो, अर्थात योग पावर भी इतनी। देखो ज्ञान हम कितना फटफट फटफट वर्णन कर लेते हैं, सारा झार चक्कर सीरी ये सब समझा लेंगे, जो भी परिचय ऐसे टॉपिक लेकर के और इतना विस्तार कर लेंगे। आजकल तो पढ़े लिखे को ऐसे में बोलना कोई बड़ी बात हो रही है, तो ज्ञान का विस्तार करना हमें जल्दी आता है। जितना उसमें हम प्रवीण है उतना योग में प्रवीण रहें, योग के वो स्टेजेस का अनुभव होगा जब उन बातों की हमारे में धारणाएं बनी हुई। जितना योग पावरफुल होगा उतनी धारणा सहज होंगी, सुतह होंगी, अपने आप बनती जाएंगी। और जैसे जैसे हमारी धारणा जीवन में दिव्यता आती जाएंगी, वैसे वैसे योग हमारा बड़ा क्लियर होता जाएगा। एकदम ऐसा लगेगा जैसे बाबा हमें एकदम दिखाई पड़ता रहेगा और वो शक्ति हमें अनुभव होती रहेगी। तो इसलिए श्रीमत, क्या क्या श्रीमत है उसका वर्णन करेंगे तो बहुत लिस्ट बन जाएंगी, और वो तो हम समय समय पर सुनते भी रहते हैं। और इसका सहज थोड़ा सा एग्जाम्पल कि जो अभी नियम सुने हैं, बहुत करके तो आपको छपे हुए भी मिलेंगे आज शायद शाम को, और उन्हीं पर हम हर समय पर पूरा ध्यान रख करके दृढ़ता से हम करते जाएं, ये हो ही नहीं सकता कि हमें उसमें सफलता न मिले। इसलिए सदा निश्चय की दृढ़ता में रहकर, अटल निश्चय बुद्धि बन करके सदा बाप की श्रीमत को पालन करते रहें, तो हम समय के अनुसार, बाबा के कहने के अनुसार, बाबा की हम बच्चों में जो उम्मीदें हैं उसके अनुसार हम स्वयं में संपूर्णता का अनुभव जरूर पाएंगे। ओम शांति। फिर भी होता है सुनते ही रहें, क्योंकि ज्ञान का विस्तार, ज्ञान सागर बाप, इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान सागर, सागर को मंथन करते रहो, विचार सागर मंथन करो, ज्ञान सागर को मंथन करो, अपना विचार सागर नहीं मंथन करो, इधर की बातें उधर की बातें मिला करके बताते रहो, ज्ञान सागर को मंथन करो तो आपकी विचारधारा बाप समान बनती जाए। नहीं तो कहते हैं विचार सागर में जाके बैठेंगे, बस ऐसे लिखी कोई टॉपिक लेके लिखते जाएंगे, बहुत विस्तार कर देंगे, शास्त्रों की बातें, उनों की बातें, किताबों की बातें, कहानियों की बातें, ये विचार सागर नहीं चाहिए, वो बहुत है, वो तो दुनिया वाले भी बहुत करते हैं स्पष्टीकरण। चलो उनों का उस ढंग से, हमारा ज्ञान के ढंग से, परंतु ज्ञान सागर को मंथन करो, अर्थात उनकी महानताओं को, उनके हर महावाक्य को मंथन करो कि इसके अंदर क्या क्या शक्ति भरी हुई है। इस प्रकार से मंथन करने से आपकी विचारधारा बाप समान बन जाएंगी और सदा आपके संकल्प में बाप जैसे संकल्प ही चलेंगे और व्यर्थ आएंगे। अच्छा, अभी समय के अनुसार 3 मिनट योग करेंगे और अभी इसके बाद आपको डरे, अभी तो संख्या कम ही नजर आती है, इसलिए मैं नहीं समझती हूँ आधा को बिठाना है और आधा को भेजना है। वैसे आधा तो नीचे है ही, क्योंकि दादी जी मिली होंगी जो जाने वाले थे, तो वो मिलके मिलके वहीं बैठ गए होंगे, फिर ऊपर चढ़े और आवे तो नीचे ही होंगे। तो उस अनुसार तो मैं समझती हूँ एक साथ आप लोगों को छुट्टी हो सकती है, फिर भी हमें पता नहीं है। अगर होगा इन्हों को बिठाना तो टाइम के अनुसार डायरेक्शन आ जाएगा, तब तक हम 3 मिनट साइलेंस में बैठ।